नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इटली और फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इसराइल हमास संघर्ष में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के बीच हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने 7 से 30 तारीख के बीच कराए जाएंगे, जबकि 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का 17 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 21 तारीख को जारी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना को 21 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में चुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी होगी। समाचार कक्ष से मनोज।
नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों में साफ सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने त्रुटिहीन और समावेशी मतदाता सूचियां बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनावों में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
द मिजोरम हैज 8.52 लाख वोटर्स, छत्तीसगढ़ 2.03, मध्य प्रदेश 5.6, राजस्थान 5.2, तेलंगाना 3.17 एंड टोटल वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी टोटलिंग टू 8.2 करोड़ मेल एंड 7.8 करोड़ फीमेल वोटर्स। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट फर्स्ट टाइम वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी 60.2 लैक्स।
विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजस्थान में चुनाव संबंधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। इसके लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जबकि कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा की ओर से सभी विभागों को आचार संहिता की कड़ाई से पालना करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अवकाश होने के बावजूद शनिवार और रविवार को शासन सचिवालय के सभी प्रमुख कार्यालय खुले रहे और कई आदेश जारी किए गए। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब जल्द ही दोनों पार्टियों का चुनाव अभियान शुरू होगा। वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक विभिन्न पार्टियों के नेताओं को प्रत्याशियों की सूची जारी होने का इंतजार है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अगले 5 साल तक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि वो जनता के भरोसे और समर्थन से इन सभी राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन राज्यों में उसकी जीत किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों की जीत होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच नजदीकी और ऐतिहासिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया।
तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है। भारत ने आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ, जिनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास संबंधी साझेदारी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं।
आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे।
वार्ता के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और तंजानिया रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। इसके माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा संबंधी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति भारत के 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ दशकों पुराने बेहतरीन संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा से राजनीतिक और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश चाहता है कि पूर्वजों की ओर से स्थापित द्विपक्षीय संबंध आगे और भी दशकों तक चलते रहें।
This visit is going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation. So my country is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi, is going to continue.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री राजनाथ सिंह का रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसेटो से मिलने का कार्यक्रम है। इस वर्ष मार्च में इटली की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में अपने समकक्ष सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवता की खुशहाली और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा चुनौतियों से तेजी से निपटने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रणाली बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में न्यायोचित और उपयुक्त कृषि खाद्य प्रणाली की ओर शोध और उसके प्रभाव विषय पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पिछले सप्ताह सिक्किम में आपदा के कारण हुए नुकसान के उपाय करने और मरम्मत कार्य पर चर्चा की गई। इससे पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का तीसरा दल झांगू के रास्ते चुंगथांग पहुंचा। पर्यटकों के पहले जत्थे को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लाचेन से निकालकर आज सुबह मंगन के रिंगहिम हेलीपैड पर पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट।
सिक्किम में आई अचानक बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। मृतकों में सेना के 10 जवान भी शामिल हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 105 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 2563 लोगों को बचाया गया है। आपदा के कारण 1381 मकान भयानक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ के कारण 14 पुल बह गए हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। त्रिशक्ति कोर उत्तरी सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, थांगो और चुंगथांग इलाकों में फंसे हुए 1700 पर्यटकों को भी सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्हें खाने पीने के सामान, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। खराब मौसम के बीच सेना पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लगभग 6500 लोगों को 26 राहत शिविरों में रखा गया है। गैंगटॉक से डीआर दुलाल की रिपोर्ट के साथ मैं निखिल कुमार।
सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने आज केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल के साथ एक बैठक की। ये दल गंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय में आपदा के जमीनी हालात का जायजा लेगा और छोटे और दीर्घकालिक मरम्मत कार्यों के लिए सिफारिश करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 700 लोग इसराइल में मारे गए हैं जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसने अभी तक गाजा में 800 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में कम 70,000 फिलिस्तीनियों ने स्कूलों में शरण ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं और संकट की इस घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। विश्वभर के नेताओं ने भी आतंकी गुट हमास के हमले की निंदा की है। इस बीच इसराइल हमास संघर्ष के कारण एयर इंडिया ने तल अवीव आने जाने वाली सभी उड़ानें शनिवार तक रद्द कर दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 ने दिखाया है कि भारतीय कूटनीति वास्तविकता में अंतर ला सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने कहा कि अधिक जटिल और अप्रत्याशित विश्व में भारत की जिम्मेदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में अरियालूर जिले के वेत्रियूर विरागलूर में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली विमानन कंपनी के हवाई किराया बढ़ाने के कारण कटरा से सांझी छत तक हवाई सेवाएं कल से महंगी हो जाएंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और निवारक उपाय विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉ पीयूष रंजन भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीटों की सराहना करेंगे और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 7वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवम्बर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवम्बर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और इसराइल हमास संघर्ष में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।